ब्रज में वृंदावन धाम की, नदीपनाथपुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समावित भक्त वृंद की जय। गौर प्रमाण अग्लोरिष्ट समृद्ध गौरी, अग्लोरिष्ट समृद्ध गौरी, अग्लोरिष्ट समृद्ध ग्लोरिष्ट श्री श्री गुरु एम श्री गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या है 15 राजा वेण की कथा। धर्म आचरित पुंसां वाक् मनः काय बुद्धिभिः लोकान् शोकान वितरति अथ अत्यंतम असंगिनाम धर्माचरति पुंसां वाङ्मनकाय बुद्धिभिः लोकान विशोकान अवित संगीनां धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्य यथान्त्यन्त्यं संगीनां धर्माचरितः पुंसां वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान्नन्तरान्त्यन्तं संसङ्गिना
निश्चय
अत्यंतम अपार सुख असंगी नाम, भौतिक प्रभाव से जो मुक्त हैं उन निष्काम मनुष्य को। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन वचन तथा शरीर और बुद्धि से इनका पालन करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो समस्त लोग को शोकों यानी कि दुखों से रहित हैं, इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छुटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। यहां पर साधु सत्रस ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, वरन मन वचन तथा शरीर और बुद्धि से एक भली प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रमुख प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर रख सकेगा, वरन सामान्य जनता भी, और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। यहां पर जो आदेश दिए गए हैं वे सरकार के प्रमुख के लिए पथदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार न केवल इस जन्म में वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीकृतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सगणार्पुनाथान्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म आचरितः पुंसां वांग मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् अन्वितरत तथास्थानं नित्यं संगिनां आत्यंतं संगिनां। जो लोग धार्मिक नियम के अनुसार रहते हैं और जो मन वचन शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो समस्त शोकों यानी कि दुखों से रहित है, इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छुटकर ये जीवन में असीम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों राजा वेण को समझाते हैं। उसको समझाने के तरीके से राजा को ये याद दिलाई जाती है कि प्रजा को सुखी बनानी चाहिए और यहां भौतिक सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्यंतिकम सुखम भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है। श्रीमद् भागवत में आत्यंतिकम सुखम वो ब्रह्मसुख की बात बताते हैं। लेकिन राजा की जिम्मेदारी है कि दुखी अवस्था से बाहर निकालना, तो कम से कम भौतिक सुख का अनुभव तो करना चाहिए। भौतिक सृष्टि इसलिए पैदा हुई है कि यदि धार्मिकता का पालन करते करते मनसा वाचा कर्मा सब स्वाभाविक रूप से लोग सात्विक होते हैं, जो देवताओं की बराबर होते हैं। तो स्वर्गलोक में जो सुख की प्राप्ति है वो उसके लिए लालायित होंगे, आकर्षित होंगे। लेकिन यहां यह भी बताया है कि प्रभुपाद जी ने कहा कि वो ये धीरे धीरे स्वर्गलोक से भी ऊपर की भावना करेंगे, क्योंकि स्वर्गलोक में भी देवता जो भक्त की तरह भगवान की प्रीति के लिए सेवा कर रहे हैं, सुख सुखी होते हुए। तो ये स्वाभाविक रूप से लोगों में ऐसी वृत्ति होगी कि चलो देवताओं की पूजा करें, सात्विक रहकर हम सुख भोग के ही जाए, आए हैं तो भोग के जाओ। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि किसी को ये आत्यंतिक सुख की भावना होते हुए भी कलयुग के प्रभाव से जो तमोगुणी है तो ये सुख बिना परेशानी नहीं भोग पाते, भौतिक सुख भी बिना परेशानी भोग नहीं पाते। कहीं ना कहीं इन लोगों को संतोष की भावना रखनी पड़ती है, क्योंकि हम ठीक हैं, चलो बहुत कमाई की, अब सुख से भगवान का भजन भी करेंगे, सुख से भगवान का भजन करेंगे। दुख में तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो लोग बेचारे फरियाद करते रहते हैं। जब सुख की भावना है तो फरियाद भी नहीं होनी चाहिए। जीव वास्तविक में आनंदमय व्यासात होने के कारण सुखी है, तो वो यदि अज्ञानता बनी रहती है भौतिक सुख, तो आत्यंतिक सुख भोगने की इच्छा वाले हमेशा इनको दुख झेलना पड़ता है। यानी कि कलयुग में सुख जब मिलता है तो जैसे किसी को रबड़ी मिलती है लेकिन इसमें कंकड़ पड़े हैं, मीठी तो लगेगी लेकिन कंकड़ जब मुख में आएगा तब रबड़ी भी मुख में से निकालनी पड़ेगी, ऐसी हाल है। यहां गुण मिश्रित सुख सुख नहीं कहलाता। भगवान सुखम आत्यंतिकम अश्रुते, वो भगवान के धाम का सुख अलग होता है। वो सुख की भावना भगवान का नाम जपते होती है। भगवान की कथा श्रवण मात्र से ही जो तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है उनसे छूटने की आवश्यकता तैयार होता है, खड़ी हो जाती है। तो एवं प्रसन्न मनसो सत्वगुण में स्थिर रहकर प्रसन्न मन, यानी प्रसन्नता सुख का अनुभव होता है तभी तो आती है। सुख का अनुभव होगा तब प्रसन्नता आएगी। तदा रजस्तमो भावा कामरो बाधरश्चे चेत एतर अनादं स्थितं सत्वे प्रसीदति। सत्व गुण का उदय होते ही प्रसन्नता यानी कि सुख का अनुभव करना ये भगवान के नाम का सीधा परिचय है। जो स्वर्गलोक में भी वही सुख की भावना देवता लोग करते हैं। क्या स्वर्गलोक में कलयुग नहीं होगा? कलयुग का प्रभाव तो तीनों लोक में है, लेकिन यहां ये जो वेण है इतना अपराधी राजा सारे प्रजा पर दुष्कृत्य कर रहा, किसी को सुखी नहीं रखता। ऐसे प्रजा को लाने वाले जिम्मेदार ये ऋषि मुनि हैं, वो उसको समझाने जा रहे। वो कह रहे हैं क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को सुखी कर भौतिक सुख, वो यदि उसको सीधा कहें कि तू भगवान का भजन कर और लोगों को सिखा भगवान का भजन कर, वो बुद्धि तो उसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि एकदम तामसिक मनुष्य है जो सृष्टि के विनाश के लिए ही पैदा हुआ है और पैदा करने वाले भी ऋषि मुनि हैं। राजा वेण को उसके पिता के अंग से वो जान भूल कर ही निकाला। ये दुष्ट को लाने से क्या फायदा है? अब सोच रहे पछता रहे हैं क्योंकि इन लोगों की साधना भी भय में है। हमारी तपश्चर्या हमारे जो ज्ञान का जो बल है तेज है, ये दुष्ट निकला हमसे ही निकला, हमने ही उसको राजा स्थापित किया। कलयुग में तो तामसिक मनुष्य ही तामसिक राजा को चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं, जिनको भगवान की भक्ति और ये हरे कृष्ण आंदोलन का भी बिल्कुल परिचय नहीं होता। धार्मिकता का परिचय होता है लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन का परिचय नहीं, न तो उनको ऐसा कोई उसमें रस है। धार्मिकता का दिखावा करने वाले कम से कम अपने आप को सुखी मानते होंगे क्योंकि वो सात्विक भाव के हैं। सात्विकता में प्रसन्नता तो अवश्य आएगी ही आएगी, प्रसन्नता सुख का अनुभव का लक्षण। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले धार्मिक मनुष्यों को जो हम भगवान की विशुद्ध भक्ति का प्रचार करें तो उसे अवश्य भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाए, उसे भगवान के बारे में जो परम सत्य है उनका अनुभव सहित ज्ञान उसको जब दिया जाता है तो उसकी भी मुक्ति कराने के लिए। यहां कोई मुक्ति की बात नहीं, मुक्ति की बात। और ऐसा स्वर्गलोक जैसा वातावरण लंबे समय तक सुख वाला है, इसीलिए यहां सुखम आंत्यंतिकम उपयोग हुआ है शब्द का, लंबे समय का। हम तो सुख के लिए तो लोभायमान है ही, सुख के लिए ही जीना चाहते हैं, यानी कि सारी उम्र हम ऐसी गधे की तरह मेहनत करेंगे, ये हमें सुख प्राप्त हो, हमारा अगला भव सुखी हो। ये धार्मिक भावना कामचलाव रूप से अपने स्थिति में वो ठीक है, लेकिन सनातन अवस्था वाले धर्मों में नहीं। ये प्राथमिक अवस्था है जो सुख की भावना से हम सीधा ही भगवत तत्व के प्रयोग में, यानी कि भगवान के परम सत्य को जानने के लिए हम प्रयत्न करेंगे तो वो सुख आएगा ही आएगा। भगवान के सत्य की जानकारी पहले ये सुख आता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो ये सुख के लिए अलग से थोड़े प्रयत्न करते हैं, अपने आप मिलता है ना, आप सुखी हो गए पहले से, देखो तो आप ठीक हो गए नहीं सभी, यहां कोई परेशानी है, मुफ्त का खाना मिलता है। तो कभी कभी हमने सुना कि उसमें भी झगड़ा करने वाला है। नहीं, ये सुख का अनुभव भगवान के धाम में अवश्य होगा। यहां भंडारा चलता ही रहता है तो साधु निश्चिंत रहते हैं, कभी इनको रोटी का प्रॉब्लम होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भूखा नहीं चाहता। धार्मिक संस्थान में सभी जगह भंडारे होते ही रहते, वो भौतिक सुख का अनुभव अवश्य करते हैं, इनको अलग से प्रयत्न नहीं करने पड़ते, लेकिन वो तो खिचड़ी साधु कहलाते हैं। जब खिचड़ी पकी हुई मिलती है हर रोज तो फिक्र क्या, इनको और सहूलत दी जाती है कि आगे बढ़ो, धर्म पुस्तक वाचन प्रवचन और कथा श्रवण इत्यादि प्रवृत्ति में बने रहे तो भगवत तत्व विज्ञानम भी जानने का मौका मिलेगा। तो ये सुख का अनुभव यदि हमें कृष्ण भावना में स्वयं सम्मिलित है तो हमें कृष्ण भावना का उपयोग ऐसी सुख की प्राप्ति के लिए थोड़ा करना है। नहीं तो सातवां अपराध हो जाता है, दसवां अपराध हो जाता है, भौतिक आसक्ति बनाए रखे, नाम के बल पर पाप करते हैं। भगवान नाम का परिचय सीधा कलयुग में आवश्यक है। ये वेण राजा ये सब आए हैं वो प्रजा के कल्याण के लिए ही इन लोगों का हेतु होता था, उसमें कर्मकांड ज्यादा उपयोग करते हैं। आप देखोगे पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, सभी के आख्यान के बाद ये आता है कि यानी कि ये कर्मकांड की प्रथा चालू, कर्मकांड इसीलिए किए जाते हैं जो प्रजा के हित में, प्रजा का कल्याण करें। तो राजा की जिम्मेदारी ऐसे कर्मकांड करने की थी, तो ये ऋषि मुनि इनको कर्मकांड के लिए ही तो प्रेरित करता है। राजा वेण को समझाने इसीलिए गए कि यदि सुखी बनना है तो ये कर्मकांड करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कर्मकांड करना। लेकिन कर्मकांड में लपेटने की बात नहीं करते, ऐसे राजा को मुक्त करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये तो परमार्थ का काम है, ये कर्मकांड स्वार्थ का काम है, मुक्त करना परमार्थ का काम। तो कर्मकांड विरोधी सारी बातें हैं इसमें कही जाएगी, कर्मकांड विरोधी चर्चा तक उसको, वो नारद मुनि जैसे ही प्राचीन बरिषद को कर सकते थे, वो प्रजापति था, प्रजापति भी ऐसे कर्मकांड में लपेट हो जाता था, दक्ष प्रजापति, क्योंकि सब जगह कर्म कर्म के प्रति जो फल का स्वरूप होता है वो बंधनकारी। ये तो श्रीमद् भागवत ही बताएंगे कि दोनों में क्या है। तो हमें ये जो ऋषि मुनिया वेण को जो दुष्कर्म कर रहा है, प्रजा का हित नहीं जानता, तो उसको रोकने के लिए कर्मकांड में प्रवृत्त करते हैं ये ऋषि मुनि। और ये भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए इनकी जिम्मेदारी पर निर्देश करते हैं। ये करना आवश्यक होता है, करना आवश्यक होता है। तो जो मुक्त हुए पुरुष ये कभी इन लोगों की बुद्धि में भेद नहीं पैदा करते। जो कर्म में आसक्त है, कर्मकांड में आसक्त है, इनको हमें हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता, जो समझने के लिए लायक है, जो उनको मुक्त करना है तभी समझाना, नहीं तो नहीं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानं कर्म संगीना। जो कर्म संग यानी कि कर्मकांड में रुचि रखने वाले हैं तो उन लोगों की बुद्धि में भेद मत उपजाओ। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानं कर्म संगीना जोषयेत सर्व कर्माणि मुक्त संगम समाचार। भक्त उनको ऐसी प्रवृत्ति में जो उसे ऊपर प्रकार की प्रवृत्ति है, ऊंची प्रवृत्ति है, उसमें वो जुड़ने का प्रयत्न करेगा कि अपने आप ही वो मुक्त हो सकता है। ये प्रवृत्ति भक्ति की प्रवृत्ति है। इसलिए नारद मुनि प्राचीन बरहिश को ये समझा रहा है, तूने तो तेरे 10 बेटे को प्रजापति बनने का आदेश दे दिया जो प्रचेता कहला, अब तू क्या बने? पता है तेने अपने इतने कर्मकांड में तेने कितने पशुओं की होम बलि चढ़ाई है, ये सभी तेरी राह देख रहे हैं कि तू कब मरेगा और तू उसका बदला ले लेंगे। वो चौंका क्योंकि कर्मकांड में तो उसका जो बंधन है वो तो बंधन तोड़ने के लिए समझाने की आवश्यकता है। तो सत्व गुण में रहकर यदि राजा या सरकार प्रजा का कल्याण कर सकती है, लेकिन ये भौतिक कल्याण है, उसमें भी जो सुख का अनुभव होता है चाहे काम चलाओ हो, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी पलटी माने, ये राजा थोड़ा 4 साल का 5 साल का होता है, गवर्नमेंट 5 साल में बदल जाती है, या नहीं तो 15 साल तक भी अत्याचार करके कांग्रेस जैसी हालत बना देगी। श्रीमद् भागवत में इसीलिए इसकी स्पष्टता करते हैं कि यदि जो ब्रह्म सुख है वो भी सुखम आत्यंतिकम बताया गया है, तो इसी तरह ही कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठां पुंस, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में स्थिर रहकर भगवान को संतोष देकर यदि हम जीते हैं तो धर्म का जो पालन है, जो आचरण मनसा वाचा कर्मा तीनों से तो वो भगवत धाम में पहुंचाता है, नहीं तो यदि भगवान का आकर्षण नहीं हो पाया तो धर्मस्वंतिष्ठां पुंस विश्वक्षेन कथातु नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम सिर्फ श्रम ही साबित करता है। बहुत सारे मायावादी भी धार्मिकता का ढोंग करके आते हैं और श्रम ही विजयते ऐसा नारा लगाते हैं। एक गधा भी श्रम कर सकता है, क्या उसकी विजय होती है? तो ऐसे लोग श्रमजीवियों या सिर्फ श्रम पर आधार रखते हैं। और जैसे नौकरी करना, चलो अभी बेकारी बहुत है तो हम आएंगे, सरकार रचेंगे और बहुत सारी नौकरियां मिलेगी, ऐसी व्यवस्था यहाँ की। श्रम के लिए ही उत्तेजित करने वाले हैं। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि साधु पुरुष सरकार पर भक्ति की जब भावना लेकर समझाता है तो वो लोग सुनाना न सुना कर देते हैं। हमें डरना नहीं, लेकिन ये कोई धार्मिक पुरुष है तो उसको भगवान की विशुद्ध भक्ति के बारे में समझाने की आवश्यकता होती है। हेतु ये है कि कम से कम वो अपनी मुक्ति तो कर सके। लाखों मनुष्य की मुक्ति एक साथ में नहीं हो पाती, क्योंकि मुक्ति तो स्वतंत्र होती है, भक्ति भी स्वतंत्र होती है, भगवान भी स्वतंत्र होते हैं। जबकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, भगवान की अध्यक्षता में काम करते। इन गुणों से छूटना मुक्ति कहलाती है। मुक्ति में ब्रह्म सुख का अनुभव होता है और वो ब्रह्म सुख सनातन होता है, काम चला नहीं। लेकिन जो भगवान से ब्रह्मन पैदा होता है वो पर ब्रह्मन है, तो ब्रह्मन पैदा होता है तो ब्रह्म सुख इनका साक्षात परिचय है। भगवान के बिना ब्रह्म सुख टिकता है, तो इसलिए यदि ये लोग दुर्बुद्धि से यदि भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते, ऐसे ब्रह्मवादी लोग भी अंततोगत्वा गिरते हैं और दुख भरी परिस्थिति में फिर से आते हैं। इनका आना जाना चालू रहता है ब्रह्मवादियों का, ब्रह्मलीन बनने वालों का ऐसा रुख भगवान के विरुद्ध यानी कि ईर्षालु बनता है, वो हमेशा गिरते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, समाज सेवा कर लो लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे। हाँ, वो लोग कहेंगे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधव को करने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके चेले चमचे भी ऐसे ही रहेंगे। पता है कि वो कहने वाला कौन था? अपने राधेदान की दीवार पर भी लिखा है। मेरा भगवान गरीबों पीड़ितों में भी रहा है, यानी कि पीड़ितों की सेवा करने से भगवान की सेवा बनाई। ये कह लेकिन इन, 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 इनको भक्ति नहीं सिखा सकते तो भगवान की सेवा भी नहीं हो पाती। पीड़ित तो सभी ही है, पीड़ा की मात्रा कम, इतना ही। तो ये ऐसा अर्थ गठन करने वाले मानववादी संस्थान भी बहुत पड़े हैं और लोग आकर्षित होते हैं कि चलो सरकार नहीं करती तो हम करें, हमारे पास थोड़ा दे दे। इसी तरह वो समाज सेवा में पड़े रहते हैं लेकिन भगवान की सेवा सिद्ध नहीं कर पाते, वो सिर्फ मनाने का प्रयोजन करते रहते हैं, मनाने का नहीं, नहीं सब बराबर है, मानव सेवा मानव सेवा, जन सेवा एज प्रभु सेवा, न तो जन सेवा खत्म होती है न उनका उद्धार होता है न कुछ। यदि जन सेवा करके भगवान उनके पास वो पहुंच सकते हैं ऐसा कोई सिद्ध कर सकता है, तब भक्ति विषय है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करने वाले इन लोगों का, जब भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि ना समझ है इसलिए वो भौतिक सुख के लिए ही यत्किंचित प्रयत्न करें। हम वैसे भी आत्मा हमेशा ये भौतिक शरीर में वो परेशानी ही भोगता है क्योंकि ये उसका असली स्थान नहीं है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपने कर्म के द्वारा करूंगा, लेकिन ये मूर्ख को पता नहीं कि कर्म की शक्ति भी भगवान से प्राप्त करनी होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, भगवान कहते हुए भी भगवान के वचनों को वो लोग पावन नहीं करते। तो समझाना अलग अलग ढंग का होता है। तो ये ऋषि मुनि जो आत्यंतिकम सुखम की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक सुख नहीं है, ब्रह्म सुख नहीं है, ये शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय जो स्वर्ग लोक में मिलता है, तो ऐसा राजा धर्म का पालन करके यहां स्वर्ग लोक बना सकता है। अमेरिका अपना जीवन का स्टैंडर्ड ऊंचा बनाकर स्वर्ग लोक की भावना करता था, लेकिन सितंबर 11 में पता चला कि वो ठीक है, अभी भय से जी रहे हैं सभी, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं। आप पहले इनके देश में जाओ तो पूरी पूरी जांच पड़ताल करेंगे कौन है, पहले तो जाने ही नहीं देते, विजिट करना है तो वीजा नहीं मिलेगा। इसलिए लोग अत्यंतिकम सुखम की भावना के लिए बहुत सारा रिस्क लेते हैं और इल्लीगल घुसपैठ करते हैं। कितने भारतीय हैं, 4.5 लाख भारतीय हैं जो इल्लीगल है, अब सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी क्या, क्योंकि पकड़े ही नहीं जाते कोई। अब दूसरे देशों के तो बहुत सारे पड़े हैं, यानी कि ये सुख के बजाय दुख पैदा करने वाले हैं। तो आए हैं तो अपना लो, कम से कम टैक्स तो देगा, हमारी सरकार की तिजोरी तो भरेगा। तो ये कलयुग में सुख की भावना के लिए ही सब विचार, नहीं तो देश छोड़ने की आवश्यकता क्या, वो यहां परेशान था, वो अत्यधिक लंबे समय तक हम बने रहे हैं, कोई सफल होता है कहीं तो मनुष्याणाम सहस्त्रीषु कश्चित अतिथि सिद्ध है, तो यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन नाम व्यक्ति तत्वता, उसका क्या है, अनेक अनेक सिद्ध यानी कि सुखी हुए हैं लोग भगवान को कितने जानते हैं, सुख की भावना के लिए तो जाते हैं। अंग्रेजी में क्या कि एवरीबॉडी इज इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कोई दुखी होना ही नहीं चाहता। सरकार की जिम्मेदारी वो निभाए, यदि नहीं नहीं निभाती तो यहां नर्क पैदा करेगी। इसीलिए सामान्य जनता का हित एक और चीज है जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और वो भौतिक सुख। लेकिन ऋषि जैसे जब राजा होते हैं, राजर्षि परीक्षित, तो इसलिए दूसरे श्लोक में इसका आगे विस्तार होगा, तब कहते हैं कि ऐसे राजा ही आध्यात्मिकता दाखिल कर सकते हैं, निम्तन है। यानी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पहले धार्मिकता का अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। जो यदि राजा करेगा तो प्रजा भी उसको फॉलो करेगी। तो ये समझाया है इसलिए मुक्त पुरुष इन लोगों में जो भौतिक कल्याण के लिए ही सरकारी लोग यदि काम करते तो उनको उत्तेजन देते, हाँ ठीक है करो करो, न करने से तो अच्छा है, लेकिन उसे वो सर्वोपरि आत्यंतिक सुखम जो ब्रह्म सुख है उस पर नहीं जाना। तो ठीक है इतना तो करो, बाद में देखा जाए। तो सभी को एक सरीखा कलयुग में हरिनाम ही लागू होता है, पर लेकिन ये भौतिक प्रकृति प्रवृत्ति में जो आसक्त हैं, वो कल्याणकारी यदि हो, यानी कि काम चलाओ कल्याण करना चाहते हैं तो ठीक है। यहां भी वृंदावन में कितने कल्याणकारी योजनाएं हो रही है, ब्रज फाउंडेशन भी कल्याणकारी योजना ही कर रहा है। लेकिन मायावती भी वो एक कल्याणकारी योजना के लिए ही आई थी, लेकिन उसका चौपट हो गया। वो परिक्रमा मार्ग का उद्धार करने बदले नाश कर रही थी, जमुना को रोक लिया और हटा दिया केशी घाट से। लोगों की भावना जो भक्ति की है उसमें बाधा कर, क्योंकि वो तो नास्तिक हैं, स्वयं नास्तिक हैं। जो भगवान के धाम में आकर ऐसी दखलगिरी करे तो वो किसी का हित करेगी, धाम की महिमा न जाने। ऐसे कलयुग में तो ऐसे विचित्रताएं पैदा होती है, तो देखना पड़ता है कि कौन किस ढंग का काम करके अनुमति प्राप्त कर सकता है। तो ये ऋषि मुनियों ने समझा कि इसमें तो ये नहीं समझाएंगे तो हमारा ही नाक कटेगा और हम पर जिम्मेदारी आएगी, तब हमें उसको मारना पड़ेगा, हम अपने ब्रह्म तेज से उसको जला देंगे यदि नहीं मानता है। राजा वेण के पिता तो बहुत अच्छे थे, यही एक लौता बेटा था इनका, लेकिन ये गुंडों का सरदार था। तब उन्होंने सोचा कि जगत के कल्याण के लिए गुंडों के राज में निकालना, तो उनको ही राजा बना दो तो दूसरे गुंडे को ये कंट्रोल कर पाएगा और प्रजा सुखी रहेगी, लेकिन ये गिनती इन लोगों की ठीक नहीं रही। बल्कि सब गुंडे निर्दोषों को पीटने लगे, यानी धर्म पालन करने में भी परेशानी आ गई। तभी तो उन्होंने अपनी गलती देखी और वो सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यहां प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि ऋषियों की जिम्मेदारी होती है, साधुओं की जिम्मेदारी होती है कि वो हेड ऑफ स्टेट जो होता है, चाहे सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो या राजा हो, धर्म के मार्ग पर चले, अनुसरण करें, तो अवश्य इस ढंग से हमें यहां सीखने को मिलता है कि ये सिर्फ भौतिक सुख के लिए ही वो लोग बता रहे हैं, बाद में उसे आध्यात्मिक सुख का परिचय करने के लिए, लेकिन ज्यादा उसमें वो समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, क्योंकि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। कम से कम सुख की ही बात कर सकते हैं। तो यहां पर जो आदेश दिए गए हैं वे सरकार के प्रमुख के लिए पथ दर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार न केवल हम इस जन्म में वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए, यानी कि अगला जीवन भी सुखी है लेकिन वो भौतिक सुख है, लेकिन भक्ति तो आप अगले जीवन का गारंटी न गारंटी मिले उसका परवाह नहीं करती, भगवत धाम को ही सीधा पहुंचाने की बात करती, तो अवश्य वो परोधर्म सवई पुंसाम परोधर्मो ये तो भक्ति अतक्षिज अहैतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ये जो सुप्रसिद्धति और ये आत्मा सुप्रसिद्धति वो ब्रह्म सुख की बात है जो सनातन अवस्था वाला है, और यहां जो सुख की बात करते हैं वो काम चला, लेकिन कितनी परेशानी पड़ती है देखो, ऐसे राजा को समझाने के लिए वो आसानी से समझ नहीं पाएगा, बल्कि वो तो स्वयं को भगवान मानने और अत्यंत दुराचारी बनेगा, और उसको मारने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो यदि ये अत्यंत सुखम है तो मारने की आवश्यकता क्या है? इसलिए हमें सोचना चाहिए कि भौतिक सुख की बात कर रहे हैं। ऋषि जैसे राजा ब्रह्म सुख की बात करते थे प्रजा के लिए, तो ये अलग है, ये न तो कोई ऋषि जैसा राजा है। तो इस ढंग से हमें ये भेद पड़ता है, तो इसका स्पष्टीकरण करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? जय, भूख लगी है। हरे